फिर आगे रोजे की असल खूबसूरती, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक को बातिल का फ़र्क खोल कर रखने वाली हैं। अब गवाही देंगे डेढ़ पारा पढ़ने के बाद, आपको लगता है कि रमज़ान के साथ कुरान का कोई ताल्लुक है? आज तो आप रोजे से नहीं है ना, एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह रोजे से होंगे। अभी आपको अच्छा लग रहा है ना, और आपके दिल में खौफ है कि हाय रमजान शुरू हो गया, फिर पता नहीं आ सकूंगी कि नहीं। मैं दिन गिन रही हूँ रोजे के लिए। क्यों? जो रोजे में आपको मजा आ रहा है ना, वो आज नहीं आ रहा, ये मैं आपको अभी से बता दूं। आप उस लज्जत को अभी बस इमेजिन कर लें, लेकिन पेट में रोजा हो, भूख लगी हो और बंदगी का एहसास और ऊपर से कुरान हो, यही वो खूबसूरत बर्तन है जिसमें फिर ईमान भरा जाता है। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान की हालत में रोज़े के साथ कुरान सुनने वाला बना दे। बस अब जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इस जुमले को देखिए, कितना प्यार है इसमें। माँ भी कहती ना, बेटा मामा तुम्हारी दुश्मन तो नहीं है ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, आई एम योर वेल विशर। तो अल्लाह के वादों पर यकीन करें, अल्लाह आपके मेरे साथ सख्ती नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है, इस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार हो, एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। ईद की तकबीरात की तरफ भी इशारा, और इसमें हिदायत पाने की दौलत पे अल्लाह की बड़ाई का जिक्र भी है। शौर के साथ अल्लाह अकबर कहें। किस बात पे? कि उसने हमें इस हिदायत के साथ जोड़ दिया। अब रमज़ान में कुरान के बाद दूसरी इबादत जिस पे एक इंसान को मज़ा आता है, वो क्या है? दुआ। अब चंद बातें दुआ पे हैं। वैसा साल कई बात यन्नी फाइन्नी करीब उजीब दावत दाईजादान। और ऐ नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो इनको बता दो कि मैं इनसे करीब ही हूँ। अल्लाह हमसे दूर नहीं है। दुनिया के बादशाह और बड़े बड़े लोग तो खुद को कई दीवारों में समेट लेते हैं, अप्रोचेबल ही नहीं रहते, लोगों की उन तक अप्रोच नहीं हो सकती या लोग उन तक पहुँच नहीं सकते। अल्लाह ताला कहते हैं मैं करीब हूँ। करीब भी कैसा? उजीब दावत दाईजादान, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है, मैं इसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। बस इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम इन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। दुआ आज उम्मत का बहुत बड़ा शिर्क, शिर्क फिर दुआ है। सूरत फातिहा में हमने पढ़ा, या का नाबुदु, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। उसमें हमने ये चीज़ देखी कि किस तरह से अल्लाह ताला के साथ बंदे का बराह रास्त ताल्लुक होता है। जब हम अल्लाह को करीब समझते हैं तो फिर हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, फिर हम दूसरों को बीच में मुश्किल में नहीं डालते। आप देखिए कि माँ से मांगना हो बच्चे ने तो किसी दूसरे को बीच में डालने की ज़रूरत है? शौहर से मांगना हो बीवी ने तो किसी तीसरे की ज़रूरत है? और पसंद करेगा शौहर अगर उसका दोस्त उसको कहे कि यार अपनी बीवी को थोड़े से पैसे तो दे दो? मेरा हल डूब मरेगा शर्म से, घर आके बीवी को पूछेगा कि मांगने थे मुझसे मांग दी, मेरे दोस्त को क्यों कहा? सीधी सी बात है, करीब को छोड़कर दूर वालों से मांगेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। इसलिए अल्लाह से कुर्बत हासिल करें। हमारा असल मसला पता क्या है? हम खुद अल्लाह से दूर होते हैं। अब खुद दूर हैं फिर कहते हैं फुलां बड़ा पहुंचा हुआ है, फलाँ अल्लाह के बड़ा करीब है, तो आप भी पहुँच जाइए। जो मेहनत उसने की आप भी कीजिए, जो कुर्बानियाँ उसने दी आप भी दीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और याद रखिए कि दुआ इबादत है। कितनी खूबसूरत किस्म है इबादत की, सब आपका फ़ायदा। हम में से अक्सर लोग कहते हैं दुआ का मतलब मांगना, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जैसे वो एक बच्चा था ना, तो किसी ने उसको पता नहीं क्या कह दिया, बेटा तरावी पढ़ लो, हर तरावी पे जन्नत में कितने महल मिलते हैं। चलो जी एक दिन पढ़ ली, दूसरे दिन पढ़ ली, तीसरे दिन नमाज में कहते मुझे और महल नहीं चाहिए। तो दुआ मांगना नहीं है, दुआ इबादत है, ताल्लुक है। देखिए मोहब्बत का ताल्लुक जो होता है ना, वो असल बड़ी बात है। खालिक और मखलूक के दरमियान वाहिद राबता दुआ। अल्लाह के तरफ से सल्लम ने दुआएं सिखाई, कुरान में दुआएं हैं, और आप देखिए कि ये वो रूहानी इबादत है जिसमें मालिक की कुव्वतों का एतराफ किया जाता है। और ये दुआ जो है वो इबादत के मानों में भी आता है, मदद के मानों में आता है, सवाल करने के मानों में आता है, पुकारना, तारीफ करना। तो पांच मुख्तलिफ मानी आते हैं दुआओं के अंदर। कभी कहीं जाके लिखा दूंगी, अभी ना परेशान हो। लेकिन बस आपका मेराज से काम एक है, अपना मुहासबा करें। क्या हर छोटी बड़ी चीज अल्लाह से मांगती हूँ? जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले किसकी तरफ नजर जाती है, किसका ध्यान आता है, किसके बारे में सोचती हूँ? बस इतना सोच लें, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। इसके बाद रमजान के कुछ अहकाम आते हैं, या फिर मैं आपको छोटी सी एक दावत दे सकती हूँ ताकि आप अपने रमजान में कोई गलती ना करें। क्योंकि आप देखिए कि हर साल के बाद जब रमजान आता है तो फिर कई सवाल उठते हैं, छोटे छोटे लोग सवाल पूछते हैं। अच्छा, सहरी के वक्त उठे, अब वजू करना था, गुसल करना था, अच्छा अब रोजा रखे पहले क्या करें, अच्छा पीरियड्स का मसला है, ये वो। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मुख्तसर सी बुक है रोजों के मसाइल के नाम पर। इकबाल केलानी साहब ने कुछ अहादीस कंपाइल की हैं जो सेहत के एतबार से सही दर्जे के हैं। तो उसमें रोजे के मसाइल हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर आप देखें औरतों के मसाइल, टॉपिक वाइज आप अपनी पसंद का इश्यू भी पढ़ सकते हैं। तो आज के इंशाल्लाह लिस्ट के साथ आपको उस बुक का लिंक भी भेजते हैं। नूरुल कुरान ऐप के ऊपर वो बुक मौजूद है, वेबसाइट पे भी यकीनन होगी, लेकिन रोज़ों के मसाइल के नाम पर एक बुक है, ऑथेंटिक किताब है। इतनी आसान है कि अगर आज से लेकर आप 2-3 दिन के अंदर उसका एक एक चैप्टर की सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लेंगे तो बहुत सारे वो सवाल जो मुझे पता है आपने मेरे से ही पूछने आना है, क्योंकि आप इधर आ रहे हैं तो वो आपको पहले से उसके जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए जरा आप इन मसाइल को पढ़ लेते हैं क्विकली। उहिल्लकुम लैलतस्सियामिर रौफसु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए रोजे के जमानों में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। शुरू में ये हलाल नहीं था, सिर्फ मगरिब से इशा के बीच का वक्त हर तरह के काम के लिए इजाजत थी, खा सकते थे, पी सकते थे, शौहर बीवी का ताल्लुक कायम हो सकता था, लेकिन ये एक गैर फितरी सी पाबंदी थी। पूरा पूरा महीना इस तरह रहना, बाज़ लोगों से इसमें खयानत होने लगी, फिर गिल्ट हुआ, फिर परेशानी हुई। अल्लाह ताला ने वो पाबंदी हटा के कहा कि अब जिस तरह रोजे के लिए तुम मगरिब से फजर तक खा पी सकते हो, इसी तरह शौहर और बीवी का ताल्लुक भी जायज़ है। वजह क्या है इस ताल्लुक को हलाल करने की? बेहतरीन खूबसूरत जुमला, हुन्ना लिबासुल्लकुम वअन्तुम लिबासुल्लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। शौहर और बीवी के ताल्लुक को बयान करने के लिए कितने कार्ड्स, कितनी कोटेशंस, कितने खूबसूरत तरीके अख्तियार कर ले। इससे खूबसूरत जुमला कोई नहीं बोल सका कि शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास है। क्यों? आइए थोड़ी सी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। आप देखिए कि लिबास जिस्म के साथ रहता है, शौहर बीवी को भी साथ रहना चाहिए। बिला वजह लंबी लंबी कमाइयों की आस पे या कुछ और फायदों के हसूल में तवील अरसा शौहर बीवी को दूर नहीं रहना चाहिए। 4 महीने एक हद मुद्दत है, एक औरत को अल्लाह ने इजाजत दी है। अगर उसकी मर्जी के बगैर मर्द दूर रहता है तो वो उससे पूछ सकती है, कोर्ट तक जा सकती है। कल के सारे मसाइल खवातीन के हैं, इसलिए कल वो सिस्टर्स जो खास तौर पे निकाह, तलाक और डिफरेंट इश्यूज जो कि वाकई डे टू डे लाइफ में बहुत कंसर्न है, और मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा इस वक्त जो क्वेश्चंस हम जैसे लोगों तक पहुंचते हैं, तो फिर बड़े उलमा के पास क्या नहीं आता होगा, वो तलाक के इश्यूज हैं। कल का हिस्सा बहुत अहम है, निकाह, तलाक, फिर ख्वातीन के जो बीमारी के दिन होते हैं। तो इंशाल्लाह कल के पारे को आप ज्यादा, मुझे लगता है, प्रैक्टिकली इंजॉय करेंगे। तो बहरहाल उसमें यह है कि शौहर बीवी को साथ रहना चाहिए, बिला वजह दूर ना रहें। बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। फिर आप देखिए कि लिबास जीनत का जरिया भी होता है, शौहर बीवी की जीनत है, बीवी शौहर की जीनत है, दोनों साथ होते हैं तो अच्छे लगते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि लिबास जितना पुराना होता है ना, उतना आरामदेह होता है। पसंद तो हम नए कपड़े करते हैं लेकिन चुभते ही रहते हैं। नई नई शादी में मजा बड़ा है पर कंफर्ट नहीं है, छोटी छोटी बात में रूठ जाते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे से यही पूछते रहते हैं, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तो बीवी अच्छी है पुरानी, वो किसी ने कहा कि 50 साल पुरानी एक देकर 25 साल की दो लेने को दिल नहीं करता, क्योंकि बाबा जी की झिड़कियां उसे नहीं खानी है, नहीं नहीं खा सकती। तो ये एक ऐसे ही मर्दों को शौक होता है नई बीवी का, जिसने की है उसने पछता कर ही देखा है पहली ठीक थी। लेकिन दूसरी शादी का या नई बीवी का एक फायदा ये होता है कि पहली बीवी की कदर आ जाती है, तो बहरहाल ये कि ये शोहर बीवी जितना अरसा साथ रहते हैं, जितना ये ताल्लुक पुराना होता है उतना खूबसूरत होता है। ये तो मीडिया और फिक्शन और नॉवेल्स और डाइजेस्टों ने नया नया जोड़े और उछलते कूदते दरख्तों की डालियों पे झूमते झामते पेश कर दिए। रियल में आप देख लीजिए वो कम में खुश और पुराने खुश हैं। और अल्लाह रहम करे अब तो हाल ये हो गया, शादी के बाद 6 माह खैर के गुजर जाएं तो फिर कहते हैं अब निभ जाएगी। जो बेसब्री और जो हालात देख रहे हैं, कभी आपने आज तक जिंदगी में सुना था? मैं अगर कल या परसों तक ना ये बात कहती तो मैंने जो अपनी पिछले लेटेस्ट जो मैंने चीज सुनी थी कि आज शादी है तो 1 हफ्ते के बाद तलाक। लेकिन आज मैं आपको कह सकती हूँ, एक दिन शादी, बीच का दिन छोड़ के तीसरे दिन तलाक हो गई। बिलीव मी, ये आंखों देखी कानों देखी सुनी बातें हैं। आज ये कुछ हो रहा है। और वो वाक्य भी आपने सुना होगा कि शादी हॉल में तलाक हो गई थी लड़की को, जब सास ने केक खिलाया शौक में मोहब्बत में और लड़की के कपड़ों पे कुछ लग गया, उसने वहां बदतमीजी की सास से। लड़के ने स्टेज पे आके माइक पकड़ के बोला कि मैं इस लड़की को तलाक देता हूँ क्योंकि इसने मेरी माँ की बेइज्जती की है। तो याद रखिए, ये रिश्ता शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों का रिश्ता नहीं है, इस पे बहुत कुछ आगे आना है, इसलिए आज अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। फिर आप देखिए, एक और लिबास और शौहर बीवी के ताल्लुक में मुमासलत है कि लिबास इंसान की शख्सियत का गमाज होता है। आप कपड़े की चॉइस से किसी इंसान का अंदर ढूंढ सकते हैं, इसी तरह रिश्ता आप कैसा ढूंढते हैं, लड़की अपने लिए किस किस्म का शौहर चाहती है और लड़का अपने लिए कैसी बीवी चाहता है, ये असल में उसका अंदर है। और बल्कि मैं एक जुमला अक्सर बोल देती हूँ, आज भी बोलने की इजाजत दीजिए, कि असल हमारा दीन भी हमारे बच्चों के रिश्तों के मौके पर खुलता है। बड़े बड़े दीनदार लोग बच्चों की शादियों के मौके पर खुल के बाहर आ जाते हैं कि अंदर फिर दुनिया ही भरी हुई है, रिश्ता दौलत के नाम पे कर दिया और अंदर खानदान ही भरा हुआ है, जाहिल है और जाड है किया अपने खानदान के सही है। तो रिश्ते करना कराना छोटी बात नहीं है। फिर इसी तरह देखिए कि लिबास ऐब छुपाता है। हमारे जिस्म पे कितने ऐब हो सकते हैं, लिबास की सूरत में अल्लाह ताला ने उनको छुपा दिया। तो शोहर बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के ऐब छुपाएं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बेलिबास शख्स जो होता है ना, वो अनह्यूमन लगता है, आप कह लीजिए कि वो जानवर लगता है। इसी तरह बिला वजह बगैर शादी के रहना दुरुस्त नहीं है। आसाब का सुकून है, खुशी है, रिलैक्सेंट होते हैं, शोहर बीवी को देखे खुश हो, बीवी शोहर को देखकर खुश हो। असल बात यह है कि ये सब कुछ कब होगा, जब हमारे रिश्ते दीन की बुनियाद पे होंगे। कल इस पे काफ़ी आयतें हैं जिस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब इसके बाद मज़ीद कुछ और बातें रमज़ान के नाते से। फरमाया, अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर इसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शब्बाशी करो और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है इसे हासिल करो। नीस रातों को खाओ पियो यहां तक कि रात की स्याही सुबह के सफेदी से इसे नुमाया नजर आ जाए, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ की हालत में हो तो बीवियों से मुबाशरत न करो, ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना भटकना। इस तरह अल्लाह ताला अपने अहकाम लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है, तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचे। आप देखिए, अगर ये सारे अहकाम अगर हमने समझने नहीं है तो इनके कुरान में होने का जरूरत क्या है? मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर कुरान सिर्फ सवाब के लिए पढ़ना होता तो सिर्फ ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर होता, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है ना, खूबसूरत भी लगता है, साउंड भी करता है। इतना कुछ इस कुरान में जो लिखा हुआ है, आप देखिए कि शोहर बीवी का रिश्ता इतना पर्सनल रिश्ता और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी हुई किताब में रखा हुआ है, कोई हिकमत है ना। ये एक हैंडबुक है, ये आपकी मेरी जिंदगी का मैनुअल है। अल्लाह सुबहान तआला आपको मुझे इस सारी चीजों से ये सिखाते हैं कि हर वो चीज जो नफ्स पे बोझ डालती है, टेम्प्ट करती है, रमजान में उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। 11 महीने लोगों से सोशलाइजिंग के हैं, तो इस 1 महीने में अल्लाह से कनेक्टेड हो जाओ। शोहर बीवी के ताल्लुक के अंदर भी ये बात बता के अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया कि जब तक तुम्हें अल्लाह के लिए कुछ जज्बे कुर्बान करने की आदत नहीं होगी, तब भी तुम फस्तबिकुल खैरात नहीं होगे। हर वक्त भी इंसान हर एक के तकाजे नहीं पूरे कर सकता, लेकिन जब हम फस्तबिकुल खैरात में भागते हैं तो एक ये भी बड़ा ताना मिलता है, اب شوہروں کو خوش نہیں رکھتی خواتین، اب شوہر دین پہ لگ گیا بیویاں راستہ دیکھتی رہتی ہیں، نہیں مینیج کر لیجئے ہر چیز کو، جب آپ اللہ سے مدد مانگ کر حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو گائیڈ کریں گے. پھر آپ دیکھیے وہ ہل لکم کا لفظ بڑا قابل غور ہے، اللہ اس رشتے کو عبادت کہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کو عبادت کا اجر ملتا ہے. صحابہ حیران ہیں پریشان ہیں، اللہ کے نبی یہ عبادت کیسے ہو گئی، یہ تو ہم اپنے نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں. آپ نے کہا اگر یہ حرام جگہ پہ حاصل کرو تو گناہ نہیں ہوگا، تو تم نے حلال طریقے سے اس کو حاصل کیا تو پھر یہ تمہارے لیے اچھا ہے. اور یہاں سے ایک سامع بر میں یہ دیکھیے کچھ نیکیاں آپ کو مظاہرہ کر کے آگے آپ کو جہاد کی باتیں آئیں گی مشکل لگے گی، کیا پتہ چلا کہ دین صرف مشکل احکامات کا نام بھی نہیں ہے اور دین صرف آسان احکامات کا نام بھی نہیں ہے. کبھی خوشیاں، کبھی آسانیاں، کبھی مشکلیں، یہ سب کچھ کر کرا کے اس دنیا سے گزر جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آگے جنتوں میں سب کچھ تیار کر کے رکھے گا. آگے مال دوسروں کے نہ کھانے کا تذکرہ، اور آپ دیکھیے روزے کی آیتیں احکامات گزرے، فوراً حرام مال سے رکنے کی بات ہے. کیوں؟ روزہ ٹریننگ ہے حلال سے رکنے کی. اصل میں مطلوب کیا ہے؟ ایک مہینہ حلال سے رک جاؤ، 11 مہینے حرام سے رکو گے. اسی لیے یہ آیت رشوت کے بارے میں آتی ہے جو یہاں آ گئی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. دیکھیے صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں، دل میں خیال آتا تھا یہ چاند کیوں کبھی چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اٹھتے تھے مسجد نبی میں آ کے اللہ کے نبی سے سوال کر دیتے تھے. جیسے بچے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے ہیں پھر ماں باپ اس کا جواب دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہاں چاند کی بات آ گئی کہ اللہ کے نبی یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر کچھ دن بالکل گول ہو جاتا ہے، یہ کیا؟ تو اس کا جواب کتنے خوبصورت طریقے سے دیا گیا، اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. بعض لوگ جب عمرے کا احرام باندھتے نا تو کسی وجہ سے بغیر عمرہ کیے ابھی گھر میں آنا پڑتا، جیسے ہم جاتے ہیں اور 4 دفعہ تو واپس آتے ہیں اندر، کبھی بیگ بھول گئے تو کبھی کرسی بھول گئے تو کبھی بچہ ہی بھول گئے. اب جب واپس آئے آپ تو ضرورت کے لیے آئے، احرام باندھتے ان کا ایک کانسیپٹ تھا، بلکہ آج بھی ہے کچھ مسلمانوں میں، کہ احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اچھا بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے. جب گزرتے تھے نا تو گھر کے اوپر جو چوکھٹ ہوتی تھی نا کہتے تھے یہ بھی تو کچھ لگ ہی رہے نا. چلو تقویٰ کا ایک خود ساختہ معیار کہ ہم چوکھٹ کے نیچے سے نہیں گزریں گے، یہ تو بڑا برا شگون ہے. اب چیز یاد آ گئی کیا کریں، دروازے سے نہیں آتے پیچھے جا کے اوپر سے چھت کے راستے کود کے اندر آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بے تک کے کام نہیں کرو. اصل میں اس میں میسج ہے، دین کا کام ڈھنگ سے کرو. لکھیے اس بات کو، آج ہم مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ہم دین کے کام بے تک کے اور بیکار طریقے سے کرتے ہیں بغیر کسی کا مذاق اڑائے. میں صرف مینشن کرنے کے لیے کہوں گی کہ بعض لوگوں کو عمرے کے دوران آپ سر کے اوپر ایک اتنا بڑا ہیٹ پہنے ہوئے اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالے ہوئے دیکھیں گے، اس کے پیچھے بھی یہی کانسیپٹ ہے. کبھی آپ نے یہ جملہ سنا کہ احرام کی حالت میں ناک کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے؟ سنا یہ جملہ؟ تو پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں جائے نماز کو یہ نہیں لگتا؟ یہ بالکل بیکار باتیں ہیں. خود ساختہ چیزوں سے دین نہیں بنانا، دین کی اصل روح رکھو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. بس تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. تو کیا پتہ چلا کہ حج کو یا عمرے کو صرف اپنے لیے ایک ایسی چیز نہیں بنا لینی چاہیے کہ کچھ مسٹیریس تھنگس کر لو. آج ہمارا حال یہ کہ ذرا کوئی کام مشکل طریقے سے کرے کہتے بہت اچھا ہوا، بہت فائدہ، بہت اچھے طریقے سے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے، طریقے سے کام کرو، احکامات کی روح پہ دیکھو. بس آپ دیکھیے حج پہ لوگ جاتے ہیں طواف پہ، طواف گھوم رہے ہیں، پھر گن وہ طواف میں دعائیں مانگنے کے جب طواف گن رہے ہوتے ہیں، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، चक्कर पे चक्कर है, भाग रहे हैं सफा वर्मा में सही से। भाई अपने दिल को साथ लाओ, ये क्यों घूम रहे हो? इधर तो तुम कह रहे हो कि न सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए, इस चक्करों को जिंदगी में भी लेके जाना। जैसे आज अल्लाह के घर के गिर्द तुम घूम रहे हो, फस्ता बेकुल खैरात, जिस तरह निकुल विच हूं, तुम्हारा विच इस वक्त खाना काबा बना है, तो इधर से निकल के तुम्हारा किबला क्यों बदल जाता है? शादी में तुम्हारा किबला दिल्ली की तरफ क्यों मुड़ जाता है? और तिजारत में तुम्हारा किबला न्यूयॉर्क की तरफ क्यों मुड़ जाता है? हज का असल में ये पैगाम था, तुम्हारी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के गिर्द घूमे। फिर खुशियों में तुम्हारे किबले क्यों बदलते हैं? शादियों में तुम्हारे किबले किसी और मुल्क में क्यों चले जाते हैं? असल ये चीज लिए बगैर हज उमरा क्या सारी जिंदगी खाना काबा में बैठे रहे, फायदा नहीं होगा। हमारा दीन लॉजिकल है, समझ बूझ के है। कितनी नासमझी की बात है, एक सीधी सादी औरत घर बैठती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ना उसको कोई देखता है ना किसी को देखने का शौक है, पर जब सर से पांव तक सज संवर के वो कहना चाहिए कि 16 सिंगार की होती है, तो हर एक को देखने की दावत दे रही होती है। ये तो फिर हज और उमरे का मकसद नहीं है, हैरत की बात है। एक जगह मुझे इत्तफाक हुआ, तो हम जब अंदर हो गए किसी जगह काम से गए, तो वहां शादी हो रही थी, तो वहां निकाह हो रहा था, बड़े पर्दे में, एक तरफ मर्द थे सारे खड़े, और मौलवी साहब या जो भी पढ़ रहे थे वो खुतबा पढ़ा रहे थे, और औरतों का बहुत ही सेपरेट खूबसूरत इंतजाम था, तो हमें अच्छा लगा। हम लोग कुछ सेटिंग्स देख रहे थे, मेरे दिल में आया, मैंने कहा ये कितना खूबसूरत इंतजाम है कि पूरी 100% सेपरेशन है दोनों की, और मौलवी साहब जो पढ़ रहे थे वो सारे हॉल में आवाज आ रही थी। खैर किस्सा मुख्तसर, वो कह लीजिए कि सुन्नत पूरी हुई, उसके बाद फिर जो खुला पर्दे हटे, मिठाइयाँ बटी, और फिर चंद मिनट विद इन, हम तो किसी काम से गए हुए थे, विद इन 5 to 6 मिनट उस हाल का पूरा नक्शा बदल चुका था। मैं उस वक्त कड़ी सोच रही थी कौन ज्यादा ना समझ है। ये 5 मिनट का प्रोटोकॉल था निकाह का कबूल, ये पर्दे के अंदर से इधर नहीं था आ सकता। ये प्रॉब्लम है आज हमारा, ये है फस्तबे कुल खैरात, ये है सिबगतुल्लाह, पूरे रंगो, आधा दीन आधा तीतर आधा बटेर, आधे गर्मी में आधी सर्दी में, यरकान हो जाएगा। आज मुसलमान का सबसे बड़ा मसला ये है, दीन का अलग खाता दुनिया का अलग खाता, हलाल का अलग खाता हराम का अलग खाता, बच्चों के कुछ और खाते बड़ों के कुछ और खाते। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह से डरो। मैं सोचती हूँ अल्लाह उस वक्त क्या सोचता होगा, हम तो यही नकम्मे, हमें तो इतनी इतना अकल है ना समझ है। अल्लाह जो बंदे को हर चीज पे नजर में रखता है, फरमाया तुम इस तरह के बेढंगे काम ना करो, तुम ऐसी बातों ने कुछ नहीं देना जब तक तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पे नहीं गुजरती, और फस्तबिकुल खैरात होगा, सारे किबले दुरुस्त होंगे, फरमाया शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो। इसके बाद जिहाद की आयते हैं, कह लीजिए कि आज के दौर का सबसे नाकाबले बर्दाश्त इशू जो इस्लाम के नाम पे पेश किया जाता है वो जिहाद है। हालांकि जिहाद ज़िरवतुल इस्लाम, असल में हम उसकी रूह नहीं समझे। लोग लफ्ज़ जिहाद समझ के कहते हैं तलवारें तीर, नहीं, जिहाद कोशिश, अटमोस्ट कोशिश। फस्तबिकुल खैरात है जिहाद, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा के बीच की भाग दौड़ है जिहाद। आपका कुरान सीखने के लिए जल्दी जल्दी घरों से निकल के आना है जिहाद, आपका दूसरों की मदद करने के लिए तैयारियां करना, ये है जिहाद। जब ये सारी कोशिशें मुसलमान कर लेते हैं, तीर तलवार तो नहीं उठाने पड़ते। याद रखिए उसी कौम को तलवारें उठानी पड़ती हैं जो कलम नहीं उठाती। आज के दिन से अगर आप देखिए कि 24 मई 2017 ये दिन है, आज 4:14 हुए हैं आपके पेरिस के टाइम के, आज बैठ के अगर हम सब यहाँ इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि आज से हमने इस पैगाम को आम करना है कि ओ मेरी दोस्तों, ओ मेरे प्यारों, ओ मेरी फैमिली वालों, कलम उठाओ कुरान उठाओ, 1 साल के अंदर सब तीर तलवारें जंगे जिहाद जो दुनिया में ना, आप इसमें एक खातर ख्वाह कमी देखेंगे। वो दुश्मन मुसलमानों को मारते हैं जिन तक हमने अल्लाह का दीन नहीं बचाया होता। ये उनका दीन हमारे पास था, भी पढ़ चुके हैं कजाली का जलना को मतम वसतन, वो कहता है तुमने हमें नहीं दिया हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आगे चौथे पारे में इसमें मजीद बातें होंगी, तो दुआ कीजिए हमारी भाग दौड़ इस दीन को आम करने में लग जाए। जब नहीं करते तो फिर दुश्मन दंदन आते हैं। अब उसका हुक्म सुन लीजिए, वकातिलु फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम वला ततदू, और तुम अल्लाह की राह में इन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इनसे लड़ो, जहां भी तुम्हारे इनसे मुकाबला पेश आए, और इन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी बड़ा बुरा है। 13 साल इन्होंने तुम्हें मक्का में इतना सताया, इतना रुलाया, इतनी तुम्हारी मुश्किलात की, तो वो बुरा था, तुम्हें इस्लाम पे अमल करने से रोका वो बुरा था, या अब छोटी सी बात को, राई के पहाड़ को तुम बड़ा करते हो। तो याद रखिए कि इस मौजू को भी समझने की जरूरत है, ताकि आज हम शर्मिंदगी से बच सके। बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ के साथ शर्मिंदा हो जाते हैं, हालांकि दुनिया के कोई मुल्क का जो भी फौज का कमांडर है वो अपने सिपाहियों को ये नहीं कहता कि जब दुश्मन तुम पे हमला करे तो तुम भीगी बिल्लियां बन के बैठ जाना, वो तुम्हें तलवारें पेश करे तो तुम उनको फूल पेश करो। करता है कोई ऐसे? जो दुश्मन आपको मारने आ गया तो क्या आप आराम से बैठ जाएंगे? तो बहरहाल इसके अंदर वो अहकाम है जो मक्का के 13 साल के सब्र के बाद नाजिल हो रहे हैं। फरमाया, और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे न लड़े तुम भी न लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से न चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ इन्हें मारो। कैसे काफिरों की यही सजा है, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तुम इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा किसी पर दस्त दराजी रवा नहीं, यानी किसी पर भी हाथ उठाने की इजाजत नहीं। माहे हराम का बदला माहे हराम ही है और तमाम हुरमतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। बस जो तुम पर हाथ उठाएं तो तुम भी इसी तरह उन पर हाथ उठाओ, अलबत्त अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो इसकी हुदूद तोड़ने से परहेज करते हैं। यानी दुश्मनों के साथ भी ज्यादती नहीं करनी तो क्या अपने साथ करनी है? और आगे देखिए खूबसूरत आयत, जब भी अल्लाह के दीन की जिद्दोजहद होगी तो माल की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त जो मुसलमान अपना माल बचा बचा के रखते हैं उसका इंजाम क्या है? आयत 195 को हाईलाइट कीजिएगा। वन फिकू फी सबीलिल्लाही वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। एहसान का तरीका इख्तियार करो कि अल्लाह मुहसिनों को पसंद करता है। जो कौम दीन पर खर्च नहीं करती उसको फिर दुश्मनों पर खर्च करना पड़ता, और जो कौम इल्म पर खर्च नहीं करती उसको जंगों में खर्च करना पड़ता, और फिर बोल देती हूँ कि जो कौम किताब और कलम पे खर्च नहीं करती उसको तीर और तलवार खरीदने पड़ते हैं। दुनिया का कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता, दीन का काम कैसे पैसे के बगैर हो? क्या अल्लाह का दीन इस काबिल नहीं है कि उस पे हमारे माल लगे? क्या अल्लाह इस काबिल है ही नहीं कि हम उसके दीन के काम को अच्छे तरीके से कर सकें? हम कहते दीन का काम करो फ्री में, दीन का काम करो बिल्कुल ऐसे हालात में कि लोगों को तुम पे तरस आ जाए, असल इधर एक पैगाम लिख ले, एक जेम बना दीजिए। अल्लाह क्या कहता है? ऐसा ना हो कि तुम अमीर हो और इस्लाम गरीब हो। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज इस्लाम गरीब है और हम मुसलमान अमीर हैं। आज हमारे अपने ज़ाती अखराजात, हमारे ज़ाती फंक्शंस, हमारी ज़ाती खुशियाँ देखें, उस पर हमारे खर्च का मेयार कोई देखे, उस पर कोई हमारी कोशिशें और शौक और जिद्दोजहद और जिहाद देखे 6-6 महीने की तैयारी का, और अल्लाह के दीन पे हमारी कोशिशों को कोई देखे। असल में ये था वो जवाल का नुक्ता जो आज से 400 साल पहले शुरू हुआ। 1000 साल तक मुसलमान पनपे रहे, उभरे रहे, इस्लाम में ऊपर रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, लेकिन जब से मुसलमानों ने अपनी जात पे दिल खोल के लगाया और इस्लाम पे हाथ रोक के मुश्किल से 100 में 250 रोते धोते निकाला, हर खर्चा 250 में से पूरा करना है, सबको ज़कात में डरखाना है, तो याद रखिए अल्लाह कहते हैं जो कौम अपने दीन पे नहीं खर्च करती वो अपने पाँव पे खुद कलहाड़ी मारती है। ये बिल्कुल वही मुहावरा अरबी का जैसे उर्दू में हम बोलते हैं अपने पाँव खुद कुल्हाड़ी ना मारो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारा दीन के नाम पे दिल खोल दे। फिर फरमाया वतिमुल हज वल उमरत लिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उमरे की नियत करो तो इसे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो, और अपने सर न मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सर में कोई तकलीफ हो और इस बिना पर अपना सर मुंडवा दे यानी बाल कटवा दे, तो इसे चाहिए कि फितिये के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्के पहुंच जाओ तो جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور یعنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اسی طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حج کے احکامات ہیں، یہ قرآن کا وہ مقام ہے، تقریباً 2.25 رکوع ہے جس میں حج کے پورے طریقے اور اس کی چھوٹی موٹی باتیں جو تھی وہ اشارتاً بیان کی گئیں۔ تفصیلات کی طرح حدیث میں، حدیث کو کوٹ کیے بغیر نہ ہماری شادیاں ہو سکتی ہیں، نکاح کا طریقہ قرآن میں نہیں پڑھیں گے آپ، حج کا پورا طریقہ نہیں لیکن اشارے ہیں۔ اس پہ بھی جو سسٹرز حج عمرے پہ جائیں اس پہ بھی الحمدللہ بہت خوبصورت سمپل بکس موجود ہوتی ہیں جس میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جب کبھی اللہ آپ کو حج اور عمرے پہ لے جائیں اس سے پہلے علم لے کر جائیں، ورنہ وہاں جا کر لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں اس کو دیکھو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اپنے گناہ تو اس حج سے بخشوانا چاہتے ہیں، اس حج کے گناہ کون بخشوائے گا؟ نیکی کرتے ہوئے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ باریکیاں ہیں جو تھوڑی فقہی باتیں ہیں جس کا اس وقت ہمارا کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ ڈیٹیلز بعد میں ضرور اس کی پڑھیں۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ یہ کس نیک کام کی بات ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسلاف جب حج کے لیے جاتے تھے تو علم حاصل کرتے تھے۔ خطیب بغدادی کا نام آتا ہے، غالباً 3 دن میں انہوں نے وہاں صحیح بخاری ایک استاد سے ختم کی تھی۔ پہلے دور میں اس طرح علم نہیں تھا سستا جیسے آج ہے، آج تو ایک کلک پہ علم لے کے ہم کہتے ہیں ہمیں علم مل گیا، اب کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے سفر میں 3-3 مہینے لوگوں کو لگ جاتے تھے اور وہاں ساری دنیا کے عالم اور آئمہ کرام آتے تھے، علم کی نشستیں لگتی تھیں۔ آج وہ جگہ بنی ہوئی، آپ جا کے پڑھیں، عربی کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، چاروں اماموں کے بیٹھنے کی جگہ حرم میں موجود ہوتی تھیں۔ اسی طرح ایک خاتون تھی، ان کا نام مرزاویہ کچھ ایسے تھا، 3 دن میں انہوں نے وہاں بخاری پوری کی تھی۔ شوق تھا اس دور میں علم کا۔ جب مسلمان علم دوست ہوتا ہے نا تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا عروج ہوتا ہے۔ جب علم دوستی ختم ہو کے صرف ایک خواہشات والی بات ہوتی ہے تو وہی چیز اس میں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیز کاری ہے، تقوی۔ پھر تقوی کی بات آ رہی ہے، کیونکہ تقوی ہی وقت پڑنے پہ صبر میں، شکر میں، برداشت میں بدلے گا۔ پس اے ہوش مندوں میری نافرمانی سے بچو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے ملک سے کوئی ایسی چیز لے جاتے ہیں جو وہاں جا کر بیچ لیں تو آپ کے سفر کا کچھ خرچ پورا ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ڈومیننٹ یعنی کہہ لیجئے کہ اصل نیت حج کی ہے، لیکن تھوڑی بہت تجارت کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین آپ پہ میرے پہ کوئی ایسی مشکل نہیں ڈالتا۔ پر یہ نہیں ہے کہ وہاں کمانے کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، نیت بہرحال ہو اور طریقہ کار بھی درست ہو۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، ذکر کے من پسند طریقے نہیں بلکہ اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں پہ ذکر کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ یہاں سے اب آپ کو 2 کردار نظر آئیں گے، یہ ہمارے آج کے اس پورشن کی آخری آیتیں۔ الحمدللہ آج کا کہہ لیجئے کہ جو گول تھا وہ بھی بالکل قریب ہے پورا ہونے کے۔ ان آیتوں کو بڑے دل سے سنیے گا، اب یہ نہ سوچیں کہ اب جانا ہے نکل جائیں، جو بھی ہے ذرا سا محسوس کریں کہ حج اور عمرے کے ضمن میں جس بات کا تذکرہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، ان میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، دنیا دنیا دنیا. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ذرا سوچیے, ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں ادھر, کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں؟ کیا میری ہر دعا دنیا کے لیے تو نہیں ہے؟ دیکھیں دنیا مانگنا برا نہیں ہے, پچھلے پارے میں پڑھا حضرت ابراہیم نے کتنی دنیا مانگی اپنے بچوں کے لیے. دنیا مانگنا برا نہیں, صرف دنیا مانگنا برا. دنیا کا غم برا نہیں, صرف دنیا کا غم برا. بات سمجھ گئے؟ جب آخرت کی قیمت پہ دنیا مانگتے ہیں وہ ہے خطرے کی بات. تو کیا کیا جائے؟ اگلے حصے میں دیکھیے خوبصورت کردار. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کوئی کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ پر حصہ پائیں گے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ ہے اصل میں آج کی دعا بھی. پارے کے اس حصے میں جو آج کی دعا ہے وہ یہی ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا. آپ دیکھیے دنیا بھی اللہ نے دینی, آخرت بھی اس نے دینی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا آپ کسی اور سے مانگ لیں اور آخرت اللہ سے مانگیں, دونوں اس کی ہیں. لیکن مسئلہ ادھر کیا ہے؟ لفظ حسنہ. حسنہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے ساتھ ملے اور اس کو پا کر بندہ رب کو راضی رکھے. یہ نہیں کہا جو ملتا لے لو, جدھر سے ملتا لے لو, حرام سے ملتا لے لو, مکروہ سے ملتا لے لو, گناہ کے کام سے ملتا لے لو, غلط چیزیں بیچ کے ملتا لے لو. نہیں, بندہ مومن اتنا گیا گزرا نہیں ہوتا. اس کا ایک ٹیسٹ ہے. دیکھیے آپ کسی کو دیکھے جو ملے کھا لے, جو ملے رکھ لے, جو ملے پہن لے. آپ کہیں گے کیا سب سٹینڈرڈ شخص ہے. اور کچھ لوگ تھے کوالٹی کے, ہر اچھی چیز ان کے نصیب میں ہے. بس یہ ہے دنیا میں حسنہ لو, اور اس کے حرام کبھی حسنہ نہیں ہو سکتا. اور یہی دعا حج کے دوران بھی اور عمرے اور طواف کے دوران اس کے چکروں میں کہاں مانگی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ایک دیوار جو اس کے دوران یہی دعا مانگی جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ کسی نے عمرے پہ جانا ہے تو میری ان سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگی اتنے فون آ رہے ہیں, اتنی دعائیں ہیں, اتنا کچھ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں ان سب کو یاد کیسے رکھوں. مجھے اندازہ ہر فون ہر میسج دعائیں 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 کریں. اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں. اس کے بعد میری کسی اور سے بات ہوئی تو ایسے ہی جیسے بندہ اپنوں کو پیار سے کہتا ہے اچھا کچھ ادھر سے چاہیے کچھ, کہنے لگی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں نے کہا وہ عمرے پہ جانے والوں سے مانگ لو, ادھر اچھی ملتی ہیں. یعنی فرانس سے دعائیں نہیں مل سکتی, حج سے عمرے سے دعائیں ملیں گی. تو دوسرے کو دعا کے لیے کہنا چاہیے, بری بات نہیں ہے. لیکن آج ہی پڑھ کے آئے ہیں ویزا سال کئی بادی انی فنی قریب. آپ خود نہیں اللہ کو پکار رہے تو کوئی آپ کے لیے مانگے گا نہیں ملے گا. آپ بھی پکاریے وہ بھی مانگے, پھر ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن آج ہمارا حال کچھ ایسا ہے جیسے قوم موسیٰ نے کیا موسیٰ سے کہا تھا کہ فد النا ربا کا, ہمیں تو اپنے رب سے مانگ کے دے. تو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ کہ دعا کرانی ہے جی کس کے, مولوی صاحب سے. مولوی صاحب کو کھانا کھلاتے ہیں, پھر ان کو گاڑی بھیجتے ہیں, کہتے ہیں ساتھ پانچ چھ بچے بھی لے آئیے گا. کیوں جی دعا کرانی ہے بھائی؟ یہ کون سی دعا ہے؟ نہیں آپ کو ذرا اچھی دعا کرانی آتی ہے. اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں درس کرانا, نہیں اصل میں دعا کرانی ہے. چھوٹا سا درس بھی کر لیجیے گا تو وہ چھوٹے سے درس کے بعد لمبی سی دعا کرانا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ نے ہمارا گول پورا کرا. آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے قرآن پڑھنے نے اس کو دعا سے روکا, یعنی اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں اور پڑھ لوں اور پڑھ لوں, تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے زیادہ عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دے. میں آپ سب کے اور اپنے لیے دعا کرتی ہوں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار. جزاک اللہ خیر, آپ بہت اچھے آڈینس ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی طرح سے سن رہے ہیں. اور آج کس بات پہ غور کرنا ہے؟ فاستبق الخیرات. وہ کیسے ہوگا؟ اپنی دوستوں کے پاس جانا ہے. نیکی کا موقع کیا ہے آج کل میرے آپ کے پاس؟ کہ دوسروں کو قرآن کی دعوت دینی ہے. اور یہ دو تین دن جو ہیں اس میں اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر آئیے. جزاک اللہ خیر.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون